हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सचीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, स्वागत आप सबका और आभारी हैं कि आप सब समय पर आए। भगवद गीता के 18 अध्यायों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और ये 18 अध्यायों की चर्चा हम लोग 18 सेशंस में करेंगे। अब तक हम लोग 9 अध्यायों की चर्चा कर चुके हैं, तो कहना चाहिए कि हम लोग प्रायः आधा भगवद गीता को पढ़ चुके हैं। 18 अध्याय हैं, उनमें से 9 अध्याय हो गए हैं, तो आधी भगवद गीता समाप्त हो चुकी है अब और आधी बाकी है। तो आज 10वें अध्याय पर चर्चा है। अब तक हम लोग बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं। अगर आप पिछले अपने सेशंस में जाएं, लेक्चर्स पर ध्यान दें, सो हम लोगों ने बहुत कुछ पहले अध्याय में बहुत कुछ सीखा, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, कूटनीति की, दुर्योधन ने, और उसके बाद भगवान का भक्तवत्सल रूप है या फिर पांडवों की विजय के चिन्ह है, और फिर अर्जुन ने कारण दिए युद्ध ना करने के। फिर दूसरा अध्याय हमने चर्चा की जहाँ अर्जुन ने समर्पण किया, भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया, आत्मा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान। फिर अन्य अध्यायों में कर्म योग इत्यादि आगे बढ़े, कृष्ण भावनामृत का पालन, और उसके बाद फिर आगे ध्यान योग 6 में, फिर 7वें में हमने भक्ति का वर्णन सुना भगवान से। अब फिर 8वां अध्याय 9वां अध्याय कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं जहां भगवान ने भक्ति का गुणगान किया। बहुत सरल है भक्ति, बहुत कोई ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है भक्ति में, तो इसको उन्होंने वर्णन किया। अब 10वें अध्याय पर हम लोग चल रहे हैं, सो आइए अब इस 10वें अध्याय को हम लोग देखते हैं कि क्या भगवान हमें इस 10वें अध्याय में सिखा रहे हैं। सो 9 अध्याय कहने के बाद अब भगवान 10वां अध्याय यहाँ कहेंगे, सो जिसको हम लोग अब चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं। हम हर सेशन के प्रारंभ में आपको याद दिलाते हैं कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जिस भगवद गीता की टीका दी गई है, जो टीका उन्होंने दी भगवद गीता पर, जिसे भगवद गीता यथारूप कहा, सो उस पे उसके आधार पर हम लोग ये अब सीख रहे हैं तो उनको प्रणाम करते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अब हम 10वें अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो 9वें अध्याय में अंत में भगवान ने कहा, मन्मना भवमत भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु, अपना मन मुझ में लगाओ पूर्ण रूप से। तो ये हमने कल सुना 9वें अध्याय में कि कैसे भगवान पर मन लगाना चाहिए, भगवान ये कह रहे हैं। सो अब ये कहने के बाद 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। सो क्यों ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं? उन्होंने तो भक्ति का वर्णन कर दिया, पत्रम पुष्पम फलम दोयम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और फिर ये सब करने के बाद फिर से अपने ऐश्वर्यों को क्यों बता रहे हैं भगवान? ये 10वां अध्याय जिसे विभूति योग भी कहते हैं, भगवान अपनी विभूतियों को प्रकट कर रहे हैं, तो क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि मन मना जब हम मन कृष्ण पर लगाना है, तो अगर हमें कृष्ण के ऐश्वर्यों का पता हो तो उन ऐश्वर्यों के माध्यम से हम अपना मन कृष्ण पर लगा सकते हैं। तो ये जो ऐश्वर्य का वर्णन है, ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति का वर्णन करते करते कहां भगवान बीच में अचानक ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भगवान कुछ भी अचानक नहीं करते हैं, ये तो हमें समझ नहीं आए वो अलग बात है। तो भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान इसलिए कह रहे हैं कि इस जो ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं, ये हमें मदद करेंगे हमारा मन भगवान पर केंद्रित करने के लिए। सो ये 10वां अध्याय है, परम भगवान का ऐश्वर्य या विभूति योग। 42 श्लोक हैं इसमें। पहले 7 श्लोकों में ये जानते हुए कि कृष्ण को जानना बहुत कठिन है, सरल नहीं है, व्यक्ति उनकी सेवा करता है। क्यों? सेवा में इसलिए लगता है क्योंकि सेवा के द्वारा जान सकता है, या वो जानना चाहता है कि मैं बस ठीक है, कृष्ण को जाना नहीं जा सकता, बहुत कठिन है, कोई बात नहीं, मैं जानने का प्रयास करूंगा, तो सेवा करता है। 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन है जिसे चतुर्श्लोकी गीता कहते हैं। गीता 4 श्लोकों में, जैसे चतुर्श्लोकी भागवत भी है, 4 श्लोकों में भागवत, ऐसे चतुर्श्लोकी गीता है। वैसे गीता 3 श्लोकी भी है और 1 श्लोकी भी है। ये तो हम आप केवल चतुर्श्लोकी का वर्णन कर रहे हैं। आगे जब हम 15वें अध्याय का वर्णन करेंगे तो 15वें अध्याय में 3 श्लोकी गीता का भी वर्णन करेंगे कि सारी गीता 3 श्लोकों में, जिसे वेदांत सार भी कहते हैं। तो ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता आएगी 8 से 11। तो इसमें क्या बताया जाएगा? बहुत सुंदर है, भगवान अपना ज्ञान देंगे और कैसे उनके भक्त होते हैं और कैसे भक्तों से वो आदान प्रदान करते हैं, ये 4 श्लोकों में भगवान वर्णन करेंगे। और फिर उसके आगे 12 से लेकर 18 तक वर्णन किया जाएगा कि अर्जुन कृष्ण की स्थिति को स्वीकार करते हैं। जब कृष्ण ने अपना वर्णन कर दिया 4 श्लोकों में, तो अर्जुन स्वीकार कर लेते हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। सो अर्जुन स्वीकार करते हैं कि आप परम पुरुष हैं, लेकिन अब मैं आपके और ऐश्वर्यों के बारे में सुनना चाहता हूं। तो क्यों सुनना चाहते हो भाई, जब तुमने स्वीकार कर लिया कि भगवान है तो क्यों सुनना चाहते हो? तो ये जान लीजिए कि भगवान के समक्ष जो प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं वो हम सबके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अर्जुन ने सोचा ऐसे तो बहुत लोग हैं जो स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो कैसे भगवान के ऐश्वर्यों से आकृष्ट हो सकते हैं? तो इसलिए भगवान से उन्होंने कहा कि मैं आपके ऐश्वर्यों को सुनना चाहता हूं। और फिर 19वें श्लोक से लेकर अध्याय के अंत तक, आखिरी 2 श्लोकों को छोड़कर प्राय अंत तक, भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। क्या मेरे ऐश्वर्य हैं, देखो। तो ये पूरा अध्याय है 10वां अध्याय, जिसमें हम भगवान पर ध्यान कर सकते हैं उनके ऐश्वर्यों के माध्यम से। तो भगवान प्रारंभ करते हैं 1 श्लोक, जिसमें वो कहते हैं, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। सो भगवान वर्णन कर रहे हैं कि हे अर्जुन अब तुम मुझसे सुनो, क्या सुनो, परम वचन, शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। सो जो भी मैं कह रहा हूं अर्जुन तुम्हारे बड़े लाभ के लिए है, तो अब इसको सुनो हे महाबाहु। तो अर्जुन अब सुन रहे हैं। तो कृष्ण आगे कहते हैं कि जितने भी देवता हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, ये बड़े बड़े लोग मुझे जान नहीं पाते हैं, संभव नहीं है मुझे जानना। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान प्रारंभ कर रहे हैं इस अध्याय में कि मुझे जानना संभव नहीं है, कौन जान सकता है मुझे, कृष्ण को कौन जान सकता है, क्योंकि भगवान सबके आदि हैं। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः, क्यों नहीं जान सकते आपको, ऐसा क्या है, क्योंकि मैं सबका आदि हूं। तो व्यक्ति अपने आदि को कैसे समझ सकता है, आगे आने वाली चीजों को समझ सकता है, लेकिन जिनसे आया है उनको पूर्ण रूप से समझना संभव नहीं है। तो फिर भी भगवान को तो कुछ तो लोग समझते होंगे, भगवान को समझा जा सकता है। तो इसका वर्णन भगवद गीता के इस विभाग में हुआ है कि भगवान कह रहे हैं देवता नहीं जानते, ऋषिगण नहीं जानते, तो फिर कैसे समझे भगवान को। तो क्या हम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि भाई हो गया, भगवान को तो समझ नहीं सकते, स्वयं खुद कह रहे हैं कृष्ण, तो फिर क्या फायदा है भगवद गीता पढ़ने का। नहीं, कैसे भगवान को समझना है इसकी विधि जाननी। भगवान को समझने के लिए हमें भगवद गीता को पढ़ना होगा, भागवत को पढ़ना होगा। भगवद गीता जो उनके ही शब्द हैं, श्री कृष्ण के शब्द हैं, उसे हमें बड़ी गंभीरता से पढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान को नहीं जान सकते, जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, अगर हम भगवद गीता और भागवतम को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो हम जान सकते हैं, केवल अच्छे से पढ़कर। दूसरा, भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान को नहीं जान सकता। तो इसीलिए भगवान की कृपा भगवान को जानने के लिए जरूरी है। जैसे भगवान ने कहा है पहले, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मैं मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मैं मूर्खों के सामने नहीं प्रकट होता, मतलब भगवान की इच्छा होती है तब भगवान प्रकट होते हैं। कोई बाध्य नहीं कर सकता भगवान को कि आपको प्रकट होना ही होना है, कैसे आप मना कर सकते हो, अरे मैंने भगवद गीता के 4 श्लोक याद कर लिए, कैसे भगवान आप प्रकट नहीं हो गए। नहीं, आपका ज्ञान, आपकी तपस्या, आपका ब्रह्मचर्य, आपका दान, आपका धर्म पालन, ये सब चीजें मदद निश्चित करती हैं, लेकिन इन सब के परे है भगवान की कृपा। भगवान को उनकी कृपा से, कृष्ण को उनकी कृपा से जाना जाता है। जब तक कृष्ण की कृपा ना हो, व्यक्ति शास्त्रों में घूमता रहता है। इसीलिए ऐसे कई लोग हैं जो शास्त्रों की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से करते हैं, एक एक श्लोक को ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि इस व्यक्ति का कितना ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के माध्यम से, उस ज्ञान के आधार से कृष्ण को बाहर कर देंगे। तो क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों के शब्दों को तो समझ गए, या उन्होंने शब्दों को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करना समझ लिया, लेकिन वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदों में अगर जानने योग्य कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो वो है श्री कृष्ण, उसको नहीं समझे, और इसीलिए उन पर कृपा नहीं हुई। कृपा नहीं हुई तो भगवद गीता के श्लोकों को कह सकते हैं, कृष्ण को नहीं जान सकते। तो इसलिए हमें ये याद रखना है, कृष्ण को समझना है तो कोई अपने पांडित्य से नहीं, स्कॉलर हो गए हो आप और आप कब कृष्ण को समझ लोगे, बिल्कुल नहीं। ऐसे कई स्कॉलर्स हैं दुनिया में जो भगवद गीता पर चर्चा करते हैं, गला सूखता है थोड़ी सी बियर पीते हैं, ऐसे लोग भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही समझ सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में बताते हैं कि कई लोग भगवत गीता पर प्रवचन करते हैं, कृष्ण की कथा करते हैं, बीच में गला सूख जाए तो लाओ जी जरा बीड़ी लाओ, थोड़ा गला सूख गया। ऐसे लोग भगवान की न तो कृपा प्राप्त कर सकते हैं और ना ही भगवत गीता को समझा सकते हैं। भगवत गीता को वो व्यक्ति समझा सकता है जो भगवत गीता को जी रहा है, उससे हम भगवत गीता समझ सकते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति से हम समझते हैं, अच्छी तरह पढ़ते हैं, भगवान की कृपा आती है और भगवान की कृपा से उनको समझा जा सकता है। तो इसलिए जान लीजिए, भगवान को जानना है, समझना है, उनकी कृपा बहुत आवश्यक है। और जब हम भगवान को जान लेते हैं तो कृष्ण को जानने का क्या क्या लाभ होता है? अगर कृष्ण को समझ लिया तो क्या फल मिलता है? कृष्ण को जानने का फल ये मिलता है, जैसे भगवान ने कहा, देवता नहीं समझ सकते, ऋषिगण नहीं समझ सकते, मानसिक चिंतक नहीं समझ सकते, क्या नहीं समझ सकते बोलो? अरे स्पष्ट है भगवत गीता में सब कुछ, क्यों नहीं समझ सकते, क्या नहीं समझ सकते? वे नहीं जानते कि भगवान अजन्मा है, वे नहीं समझते कि भगवान का कोई आदि नहीं है, अजन्म अनादिम, और वे नहीं जानते कि भगवान ये परम ईश्वर हैं, सारे जगत के सर्वलोक जितने भी लोक हैं, महेश्वरम, उनके उनके परम ईश्वर हैं, ये नहीं समझ पाते। तो हमें ये बातें, ये तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण जन्मा है, कृष्ण अनादि हैं और कृष्ण परम नियंता हैं, परम ईश्वर हैं। इस बात को स्वीकार करना बहुत सरल है। तो कृष्ण को समझने का जो लाभ है वो ये है कि हम इन चीजों को समझकर फिर जितने भी पापमय हमारे कर्म फल हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। इस जगत में बने रहने का एक ही कारण है, पाप कर्म फल। तो ये जो पापों के कर्म, पापों के फल होते हैं, ये हमें बांध कर रखते हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ हो जाता है जो हम सोचते नहीं हैं। कैसे हो जाता है? हमारे जीवन में इसलिए हो जाता है क्योंकि पापों के फल बने हुए हैं, उसका रिएक्शन आ जाता है, उसका हमें पता ही नहीं चलता, अचानक कुछ हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं, कह रहे सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक ये हो गया। अचानक कुछ नहीं होता जीवन में, जीवन में तभी होता है जब उसका कोई कारण होता है। ये जो जगत है, ये जगत कारण जगत है, कारण सागर में है, तो कारण जगत है, अर्थात हर चीज का कारण है और उसका प्रभाव है। दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो बिना किसी कारण के कुछ चीज होती नहीं है। हाँ, भगवान का धाम वो अलग बात है, वहां तो सब कुछ भगवान की इच्छा से चलता है, देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट, बट यहां सब कुछ ऐसा है। तो इसीलिए जो पाप कर्म है उनको समाप्त करना बहुत आवश्यक है, और ये प्रभाव होता है कृष्ण को समझने का। तीन चीजें ध्यान से, भगवान अजन्मा है, उनका कोई जन्म नहीं होता। अरे जन्म नहीं होता, अभी आप बहुत जल्दी जन्माष्टमी मनाने वाले हो, फिर जन्म नहीं होता कहते हो एक तरफ और जन्माष्टमी मनाते हो, ये क्या है? जन्माष्टमी भगवान के प्रकट होने का दिवस, जन्म का दिवस नहीं है, क्योंकि भगवान का जन्म होता ही नहीं है, वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं, और जिस दिन वो प्रकट होते हैं उस दिन हम उत्सव मनाते हैं, क्या गलती है उसमें? तो इसीलिए अजन्मा है, अनादि है, अनादि मतलब उनका कोई प्रारंभ नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है। हम जैसे हैं, हमारा एक कारण है, क्या कारण है? बच्चे, लड़के का कारण, बच्चे का कारण होता है उसका पिता, फिर उसके उनका कारण होता है उनके पिता, उनका कारण होता है उनके पिता, हर एक का कारण है। लेकिन भगवान क्या है? सर्व कारण कारणम, भगवान सारे कारणों के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है, और इसीलिए वो परम नियंता है। तो कृष्ण को जानने का ये लाभ होता है। और कृष्ण बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भी गुण चाहिए मुझे समझने के लिए, जो भी गुण है वो भी मैं ही देता हूं, वो भी मैं ही हूं। क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, सम्मोहों से दूर जाना चाहिए, गुण चाहिए, क्षमा सत्यम इत्यादि सब मैं देता हूं, भगवान कहते हैं। तो ये सारे गुण भी इनका जो उद्गम है वो श्री कृष्ण है। अर्थ क्या है? हमें अपने गुणों पर भी बहुत अहंकार नहीं होना चाहिए। अरे मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरे अंदर बहुत अच्छे गुण है, मैं सबको क्षमा कर देता हूं, या मैं दुख में बिल्कुल चिंता नहीं करता, मुझे कोई डर नहीं लगता, भयम चा भयम एव च, मुझे किसी तरह का भय नहीं रहता, मैं हमेशा भय रहता हूं, या मैं लोगों के साथ बहुत अच्छा करता हूं, अहिंसा का मैं पालन करता हूं, बहुत तपस्वी हूं, बड़ा दान देता हूं। ये सारे गुण कहां से आ रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं मैं इनका उद्गम हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात जानिए। जीवन में अगर इस चीज को हमने समझ लिया कि ये जो हमारी बुद्धि है, भगवान कह रहे हैं बुद्धि ज्ञान, तो ये जो हमारी बुद्धि है ये कहां से आ रही है? जिसके आधार पर, जिस बुद्धि का दुरुपयोग कर हम भगवान से दूर जा रहे हैं। भगवान की कृपा देखिए, वो बुद्धि भी भगवान ने दी। देखिए हमारी मूर्खता, जो चीज हमें भगवान से मिली है उस चीज का दुरुपयोग कर हम उन्हीं से दूर जा रहे हैं। इसे कहते हैं मूर्खता और इसे कहते हैं अहंकार। जब हम इन गुणों की बातें सुने तो हमारा अहंकार पूरा टूट जाना चाहिए। तो आइए आपका थोड़ा सा अहंकार तोड़ते हैं। क्षमा कीजिएगा अगर आपका अहंकार टूट रहा है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है, तभी हम भगवान के निकट जाएंगे। सो बुद्धि ज्ञान, किसी किसी को ज्ञान का बड़ा अपना अहंकार होता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे सब पता है, चाहे वो अध्यात्म का हो कि मुझे बहुत श्लोक पता है, या बाहरी चीज का हो, मुझे मशीनों की बड़ी नॉलेज है, मुझे अकाउंट्स की बड़ी नॉलेज है, मुझे शेयर मार्केट की बड़ी नॉलेज है, बहुत ज्ञान है मुझे। भगवान कह रहे सब मुझसे आ रहा है सारा ज्ञान। वैसे भी सारा ज्ञान वेदों से आता है, जैसे हम लोग वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, तो सभी ज्ञान वेदों से आता है भगवान, और मूल उद्देश्य वेदों का है भगवान से जोड़ना। लेकिन हम उस ज्ञान को लेकर उसको थोड़ा बहुत मोड़ तोड़ कर और भगवान से दूर चले जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, भगवान ने एक बार, किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि आप लोग कहते हो शराब नहीं पीनी चाहिए, तो शराब भी तो भगवान ने दी है, ये फलों से बन जाती है, अंगूर को सड़ाकर बनाई जाती है वाइन वगैरह, तो फिर उसमें क्या है, वो भी तो भगवान ने दिया। हमने कहा भगवान ने आपको अंगूर दिए खाने के लिए, अंगूर खाने से नशा नहीं होता, ये तो आपने उसको सड़ाकर उसकी शराब बनाना शुरू कर दिया, भगवान ने थोड़ी कहा था। कौन से वेद शास्त्र में दिया है कि अंगूर को सड़ाओ और ऐसे बनाओ और बड़े अच्छे से पियो, जीवन अच्छा हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। सो इसलिए ये चीजें कि ज्ञान हमारे पास है, हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। सभी संशयों से मुक्ति भी भगवान देते हैं। जब तक भगवान की कृपा ना हो हम हमेशा संशय में रहते हैं। हमारा जितना ज्ञान है, हमारे वैज्ञानिक बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन आता क्या है अंत में? हम जब पढ़ते थे तो हम लोग एक थियरी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद थियरी तीसरी पढ़ा करते थे। ये एटॉमिक थियरी है, फिर ये एटॉमिक थियरी आई वो डिस्कार्ड कर दी, नई एटॉमिक थियरी आई फिर वो डिस्कार्ड हो गई, फिर तीसरी आई। तो ये जो सारा संशय बना रहता है, लेकिन भगवान जब ज्ञान देते हैं असंशयम समग्रम माम, भगवान ने पहले ही कहा जो दे रहा हूं उसमें कोई संशय नहीं है। तो अगर हमारे जीवन से संशय निकलना है तो भगवान की कृपा चाहिए। क्षमा, अगर हम किसी को क्षमा कर रहे हैं, अगर हमें लग रहा है हमारे अंदर बहुत अच्छा गुण है, हम बहुत क्षमा कर देते हैं, ये भी भगवान से आता है। सत्य बोलते हैं भगवान से आता है। हमें अहंकार है कि मुझे अपनी इंद्रियों पर बड़ा नियंत्रण है, माया मुझे छू नहीं सकती, तो ये नियंत्रण करने का बल, ये शक्ति भी भगवान देते हैं। मन को नियंत्रण करना ये तो बहुत बड़ी बात है, फिर भी कई लोग कर लेते हैं, योगी लोग कर लेते हैं, या आज के समय में भी जो भगवान के ध्यान में लगते हैं वो लोग बड़े आराम से मन को वश में कर लेते हैं, तो ये भी भगवान से आता है। सुख दुख भगवान से आता है, जन्म मृत्यु भगवान से आती है, भय अभय भगवान से आता है, अहिंसा समता ये सब भगवान से, संतुष्टि या फिर हम बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं सब भगवान से, हम बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं भगवान की कृपा। दरअसल एक ऐसा व्यक्ति, सही में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो हर अवस्था में भगवान को धन्यवाद दे। जब बहुत प्रसिद्ध हो जाए तो ये नहीं सोचे ये सब मेरे कारण है, जब मन में बड़ी संतुष्टि हो तो ये नहीं सोचे मेरे कारण है, अगर आप अपनी इंद्रियों को वश में कर पा रहे हैं तो ये मत सोचिए मेरे कारण है, आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान के कारण। जीवन में एक सिद्धांत ये बहुत जरूरी है कि जो भी हमारे जीवन में अच्छा हो उसका श्रेय हम भगवान को दें, और जो भी बुरा हो उसका दोष अपने ऊपर लें कि मेरे कारण हुआ, मैंने ही कुछ गलती की होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम उल्टा करते हैं, जब कुछ गलत होता है तो उसका दोष भगवान पर देते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और इसीलिए समाज में बहुत सारी चीजें फैलती हैं, लोग फैलाते हैं, अरे भगवान होते तो ऐसा थोड़ी होता, भगवान होते तो वैसा थोड़ी होता, तो हम भगवान को दोष देते हैं। और जब कोई सही बात होती है तो श्रेय अपने ऊपर लेते, बहुत मेहनत करके ये मेडल लाया हूं मैं, बड़ी मेहनत की है मैंने, नहीं, श्रेय भगवान को दीजिए, क्योंकि बहुत लोग कर रहे थे मेहनत, आपको मिला तो इसीलिए श्रेय भगवान को, लेकिन दोष अपने ऊपर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये यहाँ हम सीखते हैं। सो कृष्ण आगे वर्णन करते हैं कि ये गुणों को ही मैं नहीं दे रहा हूं, मैं सारे लोगों का, सारे लोकों का, सभी चीजों का स्रोत हूं, सब कुछ मुझसे आता है। जैसे भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी हैं, जो ब्रह्मा जी इस जगत को बनाते हैं, तो वो कहाँ से आए हैं, ब्रह्मा जी कैसे आए हैं, तो श्री कृष्ण का विस्तार होता है महाविष्णु के रूप में, महाविष्णु का विस्तार होता है गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि कमल से, नाभि से कमल निकलता है और उस नाभि कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो भगवान कह रहे ब्रह्मा जी भी मुझसे आते हैं, और ब्रह्मा जी नहीं, जितने भी साधु जन हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, जैसे चार कुमार हैं, सप्त ऋषि हैं, 14 मनु हैं, सब मुझसे आते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होकर तपस्या करते हैं, तो वो तपस्या कैसे होती है इसका वर्णन भी है। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की जो तपस्या वो भी मैं ही देता हूं, कैसे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, वो इधर उधर घूमते, क्या करना है कुछ समझ नहीं आता है, और फिर उनके कानों में एक शब्द गूंजता है, तपह, तपस्या करो, और ब्रह्मा जी फिर तपस्या करते हैं, और तपस्या करके उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, भगवान अपने धाम का दर्शन कराते हैं, और उसके द्वारा ब्रह्मा जी आगे सृष्टि कर पाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सब चीजों का जो उद्गम है वो मैं हूं। तो व्यक्ति को कृष्ण की इस स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए, और जब हम ये समझ जाते हैं, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भगवान महान है, अरे कितने महान है वो किसी को नहीं पता, तो ऐसे भगवान को समझना चाहिए कि भगवान पूर्ण नियंता है, कैसे भगवान सारे चीजों, सभी चीजें उनसे आती हैं। और अगर इस चीज को हम समझ लेते हैं कि भगवान कैसे महान हैं, तो हम भगवान को समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बड़े आसानी से हम भगवान को समर्पण कर पाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात हमें जाननी है, और इस अध्याय में यही हम लोग सीख रहे हैं। तो किसी के मन में आ सकता है कि अरे इतने सारे भगवान ऐश्वर्यों का आगे भी वर्णन करेंगे, इस अध्याय में भी करेंगे, क्या जरूरत है, ठीक है हम ऐसे ही जान लें कि है, तो क्या जरूरत है। भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में अगर हम समझ गए, जो यहाँ बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान के ऐश्वर्य हैं, तो हम कृष्ण को बहुत आसानी से, बड़ी श्रद्धा से, बिना संशय के भगवान को, कृष्ण को स्वीकार कर सकते हैं। तो क्योंकि उनकी ऐश्वर्य को देखेंगे, अच्छा ये सब भगवान से आता है, सारे ऋषि मुनि उनसे आते हैं, हमने तो सोचा था कि ब्रह्मा जी बड़े हैं कृष्ण से, हमने तो सोचा था विष्णु बड़े हैं कृष्ण से, लेकिन ये तो ऐश्वर्य देखकर आश्चर्य हो गया, भगवान खुद कह रहे सब कुछ मुझसे आता है। तो ये जानकर हमारे मन में जो संशय है वो दूर हो जाता है और श्रद्धा से हम कृष्ण को स्वीकार करते हैं। और जब श्रद्धा से कृष्ण को स्वीकार करते हैं तो उनकी सेवा में प्रेम बढ़ जाता है। सो हमारा जो प्रेममयी सेवा है उसमें रुचि बढ़ जाती है, हम और अच्छे से उसको करते हैं। और फिर जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में आते हैं जहां हम बड़े इच्छा से, बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी संतुष्टि से भगवान को समर्पण करते हैं, बाध्य होकर नहीं। समर्पण दो प्रकार से होता है, एक किसी ने बंदूक रख दिया आपको समर्पण करना है, और दूसरा प्रेम से। तो श्री कृष्ण को प्रेम से समर्पण कर सकते हैं अगर ये ऐश्वर्यों के बारे में सुने। तो इसलिए भगवान अब 8वें से 11वें श्लोक में, जिसे चतुर्श्लोकी गीता कहते हैं, भगवान अपने सारे ऐश्वर्यों को सार के रूप में दे रहे हैं। तो 8वें श्लोक में वो अपने सारे जो ऐश्वर्यों को सार के रूप में दे देते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। कि भगवान कहते हैं ऐश्वर्य है, इनको जानकर व्यक्ति भक्ति में लगता है, भजन करता है। 9वें श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं कि अच्छा, जिसने जान लिया अहम सर्वस्य प्रभु शुद्ध भक्त हो गया तो वो कैसे मेरी पूजा में लगता है। तो भगवान बताते मत चित्ता मतगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। तो ये बताते हैं भगवान कि कैसे भक्ति करता। और 10वें और 11वें में भगवान वर्णन करते मैं कैसे आदान प्रदान करता हूं ऐसे भक्त के साथ। तो ये जो चतुर्श्लोकी गीता है ये बहुत मधुर विभाग है, जहां भगवान अपना भक्तों के साथ आदान प्रदान का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान वर्णन करते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सभी चीजों का उद्गम हूं, सब मुझसे आता है, कुछ ऐसा नहीं है जो मुझसे नहीं आता। देखिए यहां इस एक वाक्य को अगर हम जीवन में समझ लें तो हम जान जाएंगे कि कृष्ण परम भगवान, हमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभु, वो भगवान खुद कह रहे हैं सब कुछ मुझसे आता है, वो आदि है सब चीजों के। तो व्यक्ति कैसे ये समझ सकता है ये सत्य, क्योंकि भगवान ने कहा लेकिन हमारे हृदय में घुसता नहीं है तो कैसे जाएगा। बारंबार शास्त्र सुनने चाहिए, और किससे, हम किससे सुने, एक प्रामाणिक गुरु से। तब ये बात हमारे मन में बैठ जाती है कि कृष्ण ही सभी चीजों के उद्गम है, ये सत्य है, ये कोई झूठ नहीं है। लेकिन हमारा मन इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक हम एक प्रामाणिक गुरु से नहीं सुनते। इसलिए बहुत जरूरी है, और ये बात बारंबार हम दोहराते हैं, कई अध्यायों में दोहरा चुके हैं, कि भगवत गीता का ज्ञान प्रामाणिक गुरु से लीजिए। भगवत गीता का ज्ञान कहीं इधर उधर जाकर, कोई सड़क पर जाकर, कोई दुकान में जाकर ये ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये भगवद गीता का ज्ञान कौन दे सकता है हमें, कोई वैज्ञानिक दे सकता है, कोई राजनेता दे सकता है, कोई कलाकार दे सकता है, कोई खिलाड़ी दे सकता है, नहीं। भगवद गीता का ज्ञान हमें केवल एक प्रामाणिक गुरु दे सकते हैं। तो ये समझने के लिए कि कृष्ण सभी चीजों के उद्गम है, हमें प्रामाणिक गुरु की शरण जाना चाहिए। और फिर मत चित्ता मतगत प्राणा, भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि ये जो भक्त होता है, मेरा भक्त, वो हमेशा मेरे लिए कार्य करता है या हमेशा मेरे कार्यों में प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो भक्त के लक्षण क्या है, भक्त के लक्षण है कि कृष्ण उनके जीवन, उनके प्राण बन जाते हैं, और वो सतत मत चित्ता मतगत प्राण बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, हमेशा मेरे चर्चा में लगता है। ये भगवान लक्षण दे रहे हैं भक्त के। जैसे मछली होती है, मछली जल के बिना रह नहीं सकती, इसी तरह एक भक्त कृष्ण के बिना रह नहीं सकता, कृष्ण कथा के बिना रह नहीं सकता, कृष्ण की सेवा के बिना रह नहीं सकता, कृष्ण के नाम के बिना रह नहीं सकता। तो ये भगवान कह रहे ये मेरा भक्त है। तो भक्तों में या भक्ति की दो अवस्थाएं होती हैं, एक प्रारंभिक अवस्था और दूसरी परिपक्व अवस्था। प्रारंभ अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, सेवा में आनंद लेता है, सेवा कर रहा है और सेवा से ही उसको आनंद आता है, दिव्य आनंद आता है। और परिपक्व अवस्था में क्या होता है, वो भगवान के प्रेम में स्थित हो जाता है और इसीलिए सर्वोच्च पूर्णता जो है, जो भगवान के धाम में प्राप्त होती है, उसका अनुभव करता है। मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या करना है हमें, हमें हमेशा भगवान के इस स्तर पर भगवान की कथाओं को, भगवान के बारे में चर्चाओं को बढ़ा देना है। वैसे भी हम लोग समय बर्बाद करते हैं बहुत सारी चर्चा करके, जिससे कोई लाभ नहीं होता, और ये तो ऐसी चर्चा है कि इससे तुरंत लाभ हो जाता है, तो इसलिए हमें इस चर्चा को करना चाहिए। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि कैसे वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, भगवान हरेक को मदद करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कैसे जिस भक्त को तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते तेषां एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमहानाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कह रहे हैं कि जिन लोग जो मेरे भक्त हैं, मेरा आदान प्रदान कैसे है, उन्होंने जान लिया कि मैं ही अंतिम लक्ष्य हूं, इसको जान लिया, तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान हृदय से मदद करते हैं उसकी। तो जब हम कृष्ण को जानने, ये जो उद्देश्य है, ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम ये प्राप्त कर सकते हैं एक प्रामाणिक गुरु की शरण जाके, जैसे हम लोग ने कल चर्चा की थी, महात्मा बना जाता है एक महात्मा के संग में। तो कृष्ण को जाना जाता है कृष्ण के भक्त के संग में, प्रामाणिक गुरु की शरण से। और फिर जब हम ऐसा करते हैं तो कृष्ण अंदर से मदद करते हैं, हमें निर्देश देते हैं क्या, जिससे हम उनको प्राप्त कर सकें। सो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण और उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें आदान प्रदान होता है। तो हमसे क्यों नहीं हो रहा आदान प्रदान इस समय, क्या कारण है, हम भी तो भगवान को जानते हैं, कृष्ण को थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो इस समय जन्मों जन्मों से एक धूल उस पर पड़ गई है। किसकी धूल, भौतिकता की। लगता है ये जगत ही सब कुछ है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का, ये हमारे अंदर बहुत बैठ गया है कि इसी जगत को अच्छा बनाओ, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड मी, बस ये हमारे अंदर बैठ गया है। तो इसको हमें पहले शुद्ध करने की आवश्यकता है। वो कैसे होता है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, तो सबसे पहला प्रभाव है चेतो दर्पण मार्जनम, ये हृदय शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए ये आवश्यकता है हमें भगवान के भक्त बनने की, कि हमें भक्ति की आवश्यकता है, भक्ति करनी है भगवान। और भक्ति से क्या होता है, हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भक्ति का अर्थ है ऐसे सारे कार्य जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए, उसे भक्ति कहा गया। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपा। हाँ, तो भक्ति मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य, उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो वो भक्त के हृदय में अपने आप को प्रकट करते हैं, और साथ ही साथ जितना भी अंधकार है, नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। एक जैसे दीपक अंधकार में जल जाता है, और जैसे ही एक दीपक जलता है सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण ज्ञान हृदय में प्रकट करते हैं, जो भी अंधकार है वो सब नष्ट हो जाता है। तो ये वर्णन भगवान ने किया। अब 12 से 18 तक अर्जुन श्री कृष्ण की जो स्थिति है उसको स्वीकार करता है और आगे सुनने की इच्छा प्रकट करता है कि मैं और सुनना चाहता हूं। तो कैसे अर्जुन स्वीकार करता है, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवा पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्वार्षया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयमेव ब्रवीषि मे। अर्जुन क्या कह रहा है, आप परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, पूर्ण पवित्र है, आदिदेव, अजम विभुम, अजन्मा है, बहुत महान है। तो कोई कह सकता है अर्जुन तुम तो मित्र हो इसीलिए इतना गुणगान कर रहे हो। अर्जुन कहते नहीं, आहुस्वाम ऋषया सर्वे, ये सारी बातें ऋषियों से सुनी है मैंने। और ऋषि भी इसको कहते हैं, कौन कौन ऋषि, आहुस्वाम ऋषया सर्वे, देव ऋषि नारद तथा, देव ऋषि नारद इसको कहते हैं, असितो असित ऋषि कहते हैं, देवलो देवल ऋषि कहते हैं, व्यास व्यासदेव स्वयं कहते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम में जो व्यासदेव की रचना है या व्यासदेव का सबसे महत्वपूर्ण रचना है श्रीमद् भागवत, क्योंकि व्यासदेव ने सारे वेदों को लिखा, संकलन किया वेदों का, फिर वेदों में सबको, वेदों को विभाजित किया, उपनिषद दिए, पुराण दिए, सब दिए, लेकिन फिर उन्होंने वेदांत दिया, मतलब सारे वेदों का सार एक चार अध्यायों में दे दिया वेदांत। और फिर उस वेदांत को समझाया, क्योंकि वेदांत सूत्रों के रूप में है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य यतः, तब समझ नहीं पाएगा व्यक्ति, इसीलिए उन्होंने उसको समझाया और समझाने के लिए दी श्रीमद् भागवतम। तो सारे वेदों का सार है वेदांत, और वेदांत की परिभाषा या वेदांत का भाष्य है श्रीमद् भागवतम, और उसमें व्यासदेव कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही भगवान है। तो यहां अर्जुन ये कह रहा है कि मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैं आपका मित्र इसलिए नहीं कह रहा हूं, सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, और अब तो आपने भी खुद कह दिया स्वयं एव ब्रवीषि मे, आप खुद कह रहे हैं, और भगवान जो आप कह रहे हैं सर्वमेतद्रितम मन्ये यन्माम वदसि केशव, हे भगवान जो आपने कहा है वो मैं उसको सही मानता, पूर्ण मानता हूं, पूर्ण रूप से स्वीकार करता। देखिए ये हमें चाहिए, संशय नहीं, भगवान जो कह रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास। अर्जुन कहता है कि मैं इस पर पूर्ण विश्वास करता हूं भगवान, इसीलिए आपने जो कहा है ये मैंने ये जान लिया कि आप ही परम ब्रह्म परम धाम। अभी अभी आपने कहा हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं इसको पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं। तो अर्जुन इस बात को भगवान को समझाते हैं, भगवान को कह रहे हैं। और अब इस बारहवें श्लोक से अर्जुन विशेषतः, जैसे हमने बताया कि कृष्ण के ही वाक्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहे हैं, कि हे जो भी आपने कहा है वो मैं स्वीकार करता हूं। सो क्या सुना है कि ना तो देवता ना ही असुर वो भगवान को ठीक से जान सकते हैं, केवल कृष्ण जब तक उन्हें प्रकट नहीं करेंगे अपने आप को हम नहीं जान सकते, और जो श्रद्धा विहीन है आसुरी है वो भी कृष्ण को नहीं समझ सकते। लेकिन अर्जुन ने कैसे समझा है, अर्जुन ने समझा है भगवान की कृपा से। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जीवन में इस कृपा को प्राप्त करें जिससे सब कुछ प्रकट हो जाएगा। ये जो ज्ञान है ये प्रकट कराने में आपके हृदय में भगवान को एक क्षण लगेगा, आपने आंखें बंद की खोली ज्ञान हो गया, तो क्या ऐसा होता है ये कोई चमत्कार है कोई जादू है, बिल्कुल नहीं होता। तो फिर कैसे होगा, हम अभ्यास करते रहेंगे करते रहेंगे, भगवान एक दिन कृपा करेंगे कि ठीक है अब मैं तुम्हें बताता हूं, अब तुम तैयार हो गए हो, पहले तुम तैयार नहीं थे अब तैयार हो गए हो, अब मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, भगवान उस ज्ञान को कृपा के रूप में हमें प्रदान करेंगे। तो इसके लिए हमें कृष्ण के विषय में सत्य को जान लेना है। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण को पूर्ण रूप से केवल उनके द्वारा दिए गए ज्ञान या उनके अंतरंग शक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान से हम जान सकते हैं, इसलिए अर्जुन कई शब्दों को इस्तेमाल करता है भगवान को संबोधित करने के लिए, पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश देव देव जगत पते। तो ये सब क्यों इस्तेमाल कर रहा है? पुरुषोत्तम मतलब कृष्ण सारे पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तमा ये शब्द का अर्थ होता है कि पुरुषों में जितने भी पुरुष हैं उसमें उत्तम है भगवान, या फिर कहना चाहिए कि उत्तम पुरुषों में भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान पुरुषोत्तमा। और भूत भावना मतलब ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति फिर भी कृष्ण को ना समझे, तो इसीलिए वो समझा रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण सभी के पिता हैं, जितने भी जीव हैं उन सब के उद्गम हैं। भूतेश ईश मतलब नियंता, भूत मतलब जीव, तो सारे जीवों के वो नियंता हैं। देव देव जितने सारे देवता हैं, आप नाम ले लीजिए देवताओं के, चाहे ब्रह्मा जी हो, इंद्र हो, चंद्र हो, वरुण हो, गणेश हो, ये सारे देवताओं के देव देव इनके भी वो उद्गम हैं। और जगतपति मतलब जितने भी ये सारे जगत हैं उसके स्वामी हैं। भगवत गीता का अर्थ है इस तरह से कृष्ण को समझना। और इसीलिए अर्जुन अब प्रार्थना करते हैं कि ये जो आपने बताया आप इसको विस्तार से बताइए, आपके ऐश्वर्यों को समझाइए, कैसे आप सारे जगत में व्याप्त हैं। अर्जुन तो समझ चुका है, अर्जुन ने पहले ही कह दिया परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, तो फिर क्यों पूछ रहे हो अर्जुन? अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे हैं, अर्जुन को पता है कि ऐसे मूर्ख लोग आएंगे आगे जो ये सुनने के बाद भी कहेंगे कृष्ण है कि नहीं भगवान पता नहीं, कृष्ण सबके आदि हैं या नहीं। तो अर्जुन ने कहा पूछ लेता हूं, जो उत्तर आएगा तो फिर आगे आने वाले लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए अर्जुन प्रश्न करते हैं, क्योंकि जितना हम सुनेंगे बारंबार हमारा स्मरण उतना बढ़ेगा। तो अर्जुन ने प्रश्न क्या किया, मैं कैसे सतत आपके बारे में सोच सकता हूं, मैं कैसे आपको जान सकता हूं, आपके अलग अलग रूप हैं, किन रूपों में आपका स्मरण करूं? तो अर्जुन किस लिए पूछ रहा है कि अर्जुन अन्य रूपों को देखना चाहता है, अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं, अर्जुन जानता है, लेकिन देख रहा है कि इस जगत में जो लोग रहेंगे, रह रहे हैं और आगे आएंगे, वो कैसे आपको स्मरण कर सकें, वो तो आपके इस रूप को देखेंगे नहीं उस समय। तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, जिसके द्वारा अगर हम कृष्ण के ऐश्वर्यों को सुनते हैं तो हम हमेशा उनका स्मरण कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृष्ण के बारे में सुनना और कृष्ण का स्मरण करना, सोचना, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कृष्ण के बारे में सुने तो ये कैसे है, ये एक अमृत की तरह है। जब हम कृष्ण का स्मरण मात्र करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि मानो अमृत आ रहा हो, और इस अमृत से कभी कोई संतुष्ट नहीं होता। परीक्षित महाराज का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। परीक्षित महाराज अपना राज्य त्याग कर बैठे हैं, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। सुखदेव गोस्वामी आए हैं, भागवतम कह रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4th दिन शुरू हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी को लगा ये तो राजा है, इसको तो आदत नहीं है, साधु तो है नहीं, वन में रहने वाला कोई है नहीं, ये तो राजा है, इसको भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, और हो सकता है कि इसको नींद आ रही होगी। परीक्षित ने कहा बिल्कुल नहीं, आप बोलते जाइए, रुकिए नहीं, मैं सुनना चाहता हूं। तो ये भाव होता है जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि जमा हुए, उन्होंने अपना नेता शौनक ऋषि को बनाया, शौनक ने प्रश्न पूछने शुरू किए हैं, और शौनक क्या कह रहे हैं सुत गोस्वामी को, शौनक कह रहे हैं आप रुकिएगा नहीं। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वो कह रहे हैं आप रुकिए नहीं, वयम तु न वितृप्याम, हम कभी ऐसे नहीं होगा कि बस हम और नहीं सुनना है, ये तो बार बार स्वादु स्वादु पदे पदे जितना सुनते जाते हैं स्वाद बढ़ता जाता है। इसे कृष्ण कथा कहते हैं कि व्यक्ति कभी ऐसे नहीं कहता कि बस बहुत हो गया, समय हो गया, अब मैं और नहीं सुनूंगा। स्वादु स्वादु पदे पदे बोलते जाइए। और यही चीज विदुर जी कहते हैं, जब विदुर जी मैत्री मुनि को मिलते हैं तो विदुर जी भी यही कहते हैं, क्रीडन विधत्ते द्विज गोसुराणा क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनो न तृप्त्यत्यपि शृण्वतामना सुश्लोक मौलेश्वरितामृतानि। कि मन कभी तृप्त नहीं होता, सुश्लोक मौलेश्वरितामृतानि, ये अमृत जाना चाहिए, बारंबार जाना चाहिए। तो अगर हमें कुछ सुनना है तो बारंबार भगवत गीता सुने, भागवत सुने, कृष्ण की कथा सुने, जैसे परीक्षित ने सुनी, जैसे शौनक आदि ऋषियों ने सुनी, जैसे विदुर जी ने सुनी। 7 दिन 7 रात बैठे हुए हैं परीक्षित महाराज, बस सुन रहे हैं कृष्ण कथा को। तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण संदेश भगवत गीता के इस विभाग से हमें मिलता है। और अब भगवान अपने ऐश्वर्यों को कहना प्रारंभ कर रहे हैं कि कैसे मेरे ऐश्वर्य हैं, उनको देखो अर्जुन। तो कृष्ण ये तो अनंत है, असीमित है, उनको समझना, उनको ये महानता को जानना ये संभव नहीं है। हमारी इंद्रियां बहुत सीमित हैं, भगवान असीमित हैं, तो फिर क्यों भक्त उनको समझने का प्रयास करते हैं? ऐसा क्या है कि वो उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण के जो विषय हैं वो इतने आनंद देने वाले हैं कि वो अमृत की तरह लगते हैं। और कृष्ण जीवों की सीमा को जानते हैं, इसीलिए कृष्ण प्रधानता अपने जो ऐश्वर्य हैं उसको केवल बता रहे हैं, बहुत थोड़े से ऐश्वर्यों को। ये जो ऐश्वर्य बताएंगे इस जगत के, केवल इसलिए है कि इनसे वो कैसे जगत को नियंत्रित करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि वो सभी कारणों के कारण हैं। अहम् आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम् आदेश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। अहम् आदि, मैं ही आदि हूं, मध्य हूं और भूतानाम अंत एव च। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। या भगवान कहते हैं अहम् आत्मा गुणाकेश, मैं परमात्मा हूं सबके हृदय में। सो ये भगवान का वर्णन है। और फिर भगवान अब कुछ अपने असीमित ऐश्वर्यों को प्रकट कर रहे हैं। 20वें श्लोक से हम अब एंड अब प्राय अध्याय के अंत तक देखेंगे। अब इतने सारे ऐश्वर्य हैं, समय हमारे पास कम है कि हम एक एक ऐश्वर्य को समझाएं, इसीलिए बहुत जल्दी इनकी सूची में से थोड़े थोड़े लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भगवान वर्णन करते हैं कि जितने भी देवता हैं उनमें मैं इंद्र हूं। क्यों? इंद्र राजा माने जाते हैं। तो भगवान जो भी ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, जिस विभाग का, जिस कैटेगरी का वर्णन कर रहे हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का वर्णन करके कह रहे हैं मैं हूं। मैं हूं मतलब क्या है? वो मेरा स्वरूप है, या सबसे, या कहना चाहिए हर चीजों में सर्वश्रेष्ठ चीज कृष्ण है। दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सर्वश्रेष्ठ चीज श्री कृष्ण है। सो देवताओं में मैं इंद्र हूं, आदित्यों में मैं विष्णु हूं, मारुतों में मैं मरीचि हूं, रुद्रों में मैं शिव हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं। अगर सेनापतियों की बात हो, सेना नायकों में तो मैं कार्तिकेय हूं, वसुओं में मैं अग्नि हूं, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूं, सृष्टि करने वालों में मैं ब्रह्मा हूं। ऐसे भगवान वर्णन करते जाते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? ये दिखाने के लिए कि हम लोग सोचते हैं कि हमें आवश्यकता है कि मैं किसी एक इंद्र की पूजा कर लूं तो वर्षा हो जाएगी, मैं किसी और की पूजा कर लूं तो संतान हो जाएगी, इनकी पूजा कर लूं तो धन मिल जाएगा। ये सब हमारे मन में भरा हुआ है, ये सब इन चीजों को हम पढ़ लेते हैं कहीं से। तो भगवान कह रहे हैं ये सब मैं हूं, क्या चिंता है, क्यों जा रहे हो कहीं और? जैसे बलि महाराज, बहुत सुंदर वर्णन है कि बलि महाराज वामन देव को दान दे रहे हैं। तो दान देने के समय क्या हुआ? जब मांगा उन्होंने तो बलि महाराज से उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज हंसने लगे, अरे बच्चे हो, दिख तो बड़े बुद्धिमान रहे हो शक्ल से, लेकिन है नहीं बुद्धि, मुझसे मांगा, मैं बलि जिसके पास सारा ऐश्वर्य है, मांगा क्या 3 पग भूमि? अभी भी रुक जाओ, समय है, कुछ और मांगना चाहते हो मांगो, गांव मांग लो, धन मांग लो, क्योंकि बलि महाराज एक बात कहते हैं कि जो मेरे पास आ गया उसको फिर किसी और के पास जाकर मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं इतना देना चाहता हूँ। देखिए कितनी सुंदर बात है, बलि महाराज कह रहे हैं कि मैं इतना देना चाहता हूँ कि फिर आपको कहीं जाकर और मांगना ना पड़े। अब आप थोड़ा यहां से लो, थोड़ा वहां से लो, नहीं सब ले लो मुझसे। तो यही है, जैसे गांवों में ऐसा होता था कि कई एक कुआं कपड़े धोने के लिए, एक कुआं नहाने के लिए, एक कुआं जल पीने के लिए अलग हुआ होगा, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा जलाशय हो तो सारी चीज एक ही जगह हो जाती। तो जैसे बलि महाराज ने कहा, जैसे जलाशय का उदाहरण है, ऐसे कृष्ण है कि आप किसी के पास जो, अरे आपसे मुझे थोड़ा धन मिलेगा, आपसे सुंदर पत्नी मिल जाएगी, आपसे संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, आपसे ये मिलेगा, कृष्ण के पास आओ सब कुछ मिलेगा। ये कृष्ण इस विभाग से हमें समझा रहे हैं। तो कौन कौन सी श्रेणियों में कृष्ण वर्णन करते हैं? कृष्ण साधुओं का वर्णन करते हैं, सारे साधुओं में मैं व्यास देव हूं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों मुनियों में मैं भृगु मुनि हूं, या फिर देव ऋषियों में मैं नारद हूं, या पुजारी या पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, बहुत अच्छा सोचने वालों में, बड़ी बुद्धि जिनके अंदर है उसमें मैं शुक्राचार्य हूं, क्योंकि शुक्राचार्य की बुद्धि बहुत है। तो भगवान ऐसे सब वर्णन कर रहे हैं कि जितने भी साधु हैं आप देख सकते हो दरअसल वो मैं हूं। मैं हूं मतलब क्या है? क्या हमें मानना चाहिए कि व्यासदेव भगवान है, हमें मानना चाहिए प्रभु कृष्ण है? क्या है मतलब? उनके अंदर जो शक्ति है उसको देने वाला मैं हूं, उसको नियंत्रण करने वाला मैं हूं, वो मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो मेरी शक्ति का प्राकट्य है। और फिर मनुष्यों की बात की जाए, राजाओं की बात की जाए, तो भगवान कहते हैं पांडवों में मैं धनंजय हूं, पांडवों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन माने जाते हैं, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं, और राजा हूं नरों में, मनुष्यों में, मतलब जहां भी श्रेष्ठता की बात आती है कृष्ण कहते हैं मैं हूं। और अगर पशुओं की बात की जाए, पशुओं की, तो क्या पशुओं में आप हो? पशुओं में भी मैं हूं, उच्च ईश्वर सव अश्वानाम, जितने भी अश्व हैं घोड़े हैं उसमें से मैं उच्च ईश्वर हूं, हाथियों में ऐरावत हूं, सर्पों में मैं वासुकी हूं, गायों में सुरभि हूं, ऐसे भगवान बहुत सारा वर्णन करते हैं। तो एक के बाद एक भगवान कहते जाते हैं, किस लिए? कि हम सब जब इन चीजों को देखें तो भगवान का स्मरण कर सकें, कृष्ण का स्मरण कर सकें। अब देखिए, जैसे हमने वर्णन किया कि ऋषियों में, देवताओं में भगवान, तो हम जब देवता का नाम सुने हमें कृष्ण का स्मरण आना चाहिए, कृष्ण का मैं हूं, तो ये सब अपनी शक्ति उनसे प्राप्त कर रहे हैं। हम जिनका भी वर्णन सुन ले, प्रहलाद का वर्णन सुन ले, तो प्रहलाद दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं भगवान बता रहे हैं, तो हमें कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। तो जो भी हम देखें, या फिर हम साधुओं की बात करें, साधुओं का नाम सुने कृष्ण का स्मरण हो, हम पांडवों की बात सुने कृष्ण का स्मरण हो, हम किसी घोड़े को देख लें, देखिए कितना सरल है, कृष्ण को भूल ही नहीं सकते हम। किसी घोड़े को देख ले, किसी हाथी को देखे तो हम सोचें कि हाथियों में सर्वश्रेष्ठ ऐरावत है और वो ऐरावत भगवान श्री कृष्ण है। गायों को देखें तो गायों में सर्वश्रेष्ठ गाय सुरभि है और वो सुरभि कृष्ण का प्राकट्य है। तो ये कितने सारे वर्णन भगवान ने किए, केवल इसलिए कि हम जाने कि जो भी चीज हम देखें उससे हम कृष्ण का स्मरण कर सकें। या फिर आप भगवान ने और भी बहुत सारी चीजें कही, हम सारा विस्तार में नहीं जाएं, लेकिन भगवान एक चीज कहते हैं कि जो धोखेबाज हैं उनके अंदर भी जो धोखा देने की शक्ति वो मैं देता जो धोखा देते हैं, या फिर जो शक्तिशाली हैं, जो अस्त्र शस्त्र उठा सकते हैं, वो भी मैं ही। सो ये चीजें बताती हैं कि हम हर जगह कृष्ण को कैसे देख सकते हैं। हम किसी के अंदर बड़े अच्छे गुण देखें, बुद्धि देखें, तो जान ले कि कृष्ण ने कृपा की है। हम किसी को देखें कि इसके अंदर बहुत नैतिकता है, बहुत नैतिकता का पालन करता है, कृष्ण ने कृपा की है। बहुत बड़ा एडवेंचर कर रहा है, उसने हिमालय पर चढ़ गया, एवरेस्ट की चोटी को पार कर लिया, भगवान ने कृपा की, क्योंकि बलम बलवताम चाहम, तो जितने भी बल है, बलवान है, उनका बल मैं हूं। तो इस तरह कृष्ण प्रकृति को हम लोग देखें, सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें, हिमालय को देखें, सागर को देखें, किसी वृक्ष को देखें, अश्वत्थ वृक्ष को देखें, गंगा को देखें, तो हमें भगवान का स्मरण आना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे ये सब मैं हूं। और इतना ही नहीं, भगवान कह रहे कालोस्मि, ये जो काल है वो भी मैं ही हूं, जो ये इतना प्रभावी काल है वो भी मैं ही हूं। और ऋतुओं में भी भगवान कहते मासा नाम मार्ग शीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमा कर, तो महीने जो आते हैं वो भी मैं ही हूं। ऋतुओं में ऋतुएं कैसी हैं, अब तो सब लोग ऋतुएं भूल चुके हैं, हम लोगों को जनवरी फरवरी याद रहता है, पता नहीं रहता कि ये कौन सी ऋतु चल रही है। इस समय वसंत ऋतु है, हेमंत ऋतु है, शिशिर है, ग्रीष्म है, वर्षा है, हमें कुछ पता ही नहीं। हम तो प्रारंभ अपना साल करते हैं वरी से, जनवरी फरवरी, केवल वरी करते रहते हैं। लेकिन भगवान कहते ऋतुओं में मैं सबसे अच्छी ऋतु होती है, जहां कुसुमा कर बसंत ऋतु आती है, भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। और अगर सिद्धांतों की बात की जाए तो भगवान उन सिद्धांतों को भी दे रहे हैं कि हर एक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा मैं हूं, हर एक जीव में जो चेतना है वो मैं हूं, इंद्रियों में मन मैं हूं, मैं ही प्रारंभ मैं ही अंत हूं। और एक महत्वपूर्ण बात भगवान बताते हैं, सभी चीजों का जीव बीज प्रदान करने वाला व्यक्ति भी मैं। ये जो प्रश्न आता था कि बीज पहले आया वृक्ष पहले आया, भगवान ने कहा बीज मैं प्रदान कर रहा हूं बीज। तो ऐसे भगवान इन सब चीजों को बताते हैं। और अंत में ये भी कहते हैं कि वेदों में जो ओंकार मंत्र है वो मैं हूं। देखिए कोई भी वेदों का मंत्र ओम के बिना पूरा नहीं होता। देवताओं के लिए भी अगर कुछ कहा जाए तो ओम कहना चाहिए, तो वो ओम क्या है? वो ओम है भगवान। वैदिक साहित्यों में ओम शब्द की परिभाषा दी गई है, उसको तीन भागों में बांटा गया है, अ उ और म। अकार उच्चते कृष्ण सर्वलोकैक नायके, उकार उच्चते राधा मकार जीव वाचक। अ उ और म, ओम में क्या है? अकार कृष्ण, उकार राधा रानी, मकार जीव वाचक जीव। तो ये ओम शब्द है जहां श्री श्री राधा और कृष्ण को संबोधित किया जाता, और कोई मंत्र इसके बिना नहीं होता। भगवान कहते वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूं। तो इस तरह श्री कृष्ण ये बताते हैं कि मेरे ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है अर्जुन, ये तो मैंने जो तुम्हें दिया ये तो बहुत छोटा सा क्या कहते कि सैंपल दिया तुम्हें कि क्या है मेरे ऐश्वर्य, अब मैं बताने जाऊंगा तो फिर युद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने थोड़ा सा ऐश्वर्य दिया कि ये तो बहुत थोड़ा है। और ये सब जो आता है, भगवान कहते हैं इस जगत में जो भी ऐश्वर्यशाली है, सुंदर है, शक्तिशाली है, ये केवल मेरे ऐश्वर्य का अंश मात्र है। इस बात को भगवान कहते हैं। और कृष्ण इस जगत को भी धारण करते हैं, ये जितना जगत है इसमें व्याप्त है, केवल अपने एक अंश मात्र से परमात्मा के रूप में वे सभी को ज्ञान और बल दे रहे हैं। तो दसवां अध्याय ये सार के रूप में अंत में भगवान जिसको कहते हैं। तो ये क्या हमने इससे सीख सकते हैं कि किस तरह हम सर्वोच्च भक्ति के पथ को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह भगवान का संग करके, और अपना मन हम कैसे केंद्रित कर सकते हैं कृष्ण भावना अमृत में, जब हम पूर्ण रूप से भक्ति में लगते हैं। तो दसवें अध्याय में ये चीजें हमें सीखने को मिलती हैं कि भक्ति कीजिए, भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए और उन पर अपना मन केंद्रित कीजिए, और फिर इस तरह हम भक्ति की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे, श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आशा करते हैं कि इस सेशन से, ये जो सेशंस आपको दिए जा रहे हैं, इनसे आपको निश्चित लाभ हो रहा है। हम प्रश्नोत्तर निश्चित लेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तर के पहले हम आप सब से कुछ सुनना चाहते हैं आज। तो आज थोड़ा सा बदलाव करते हैं, और आप सब से हम क्या सुनना चाहते हैं, हम एक एक लाइन में सुनना चाहते हैं कि अभी तक आपने 10 अध्यायों को सुन लिया, और 10 अध्यायों को भगवद गीता के सुनने के मतलब आधी से ज्यादा भगवद गीता हो गई, 10 अध्यायों को सुनने से आपको क्या प्रभाव हुआ, आपको कैसा लग रहा है, कृष्ण के प्रति कुछ समर्पण, कृष्ण के प्रति कुछ अच्छा भाव, या आपको क्या लग रहा है ये सुनकर। तो पहले हम आप सबसे ये सुनना चाहते हैं और फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आप में से जो लोग बोलना चाहें, थोड़ा थोड़ा, बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन मत दीजिएगा कि अब 10 अध्यायों का सार देंगे तो फिर एक भी व्यक्ति पूरा नहीं बोल पाएगा। थोड़ा थोड़ा निश्चित बोलिए, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप सबसे सुने कि क्या प्रभाव हो रहा है, ताकि हमें भी पता चले कि कृष्ण इस तरह से जो हम कृष्ण का विषय सुन रहे हैं तो हमें कृष्ण के विषय में ज्ञान बढ़ रहा है या नहीं। नम्रता, आप कुछ कहना चाहोगे?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे अंदर सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूं तो मुझ पे ये प्रभाव पड़ा है कि कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो बहुत बढ़ गया है, और ये अंदर से आता है कि जितना हो सके उतना सेवा करूं, चाहे जैसे भी तरह कर सकूं।
बहुत अच्छा, वंडरफुल नम्रता, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न है। यस, कि कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ना और कृष्ण की सेवा करने में रुचि बढ़ना। अनंता।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझमें एक्सेप्टेंस आ रही है, हर चीज को एक्सेप्ट करने की पावर आ रही है कि जो भी कुछ है वो सब कृष्णा दे रहे हैं, बुरा हो, अच्छा हो, ईविल हो, जो भी है, तो वो एक्सेप्टेंस।
बहुत अच्छा, यस, एक्सेप्टेंस पावर बढ़ रही है। नहीं तो हम लोग हमेशा प्रश्न करते हैं, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, अच्छा क्यों, ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, लेकिन एक्सेप्टेंस पावर बढ़ रही है। थैंक यू। एक सेकेंड नवरिता, जस्ट वन मिनट, यहाँ पर कोई लिंक भेज दें, जो अटेंडेंस का लिंक है, रेवती प्राण प्रभु अगर आप हैं सो कृपया लिंक को भेज दीजिए अभी इसमें। ओके, यस नवरिता।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने ये सेशन ज्वाइन किया है, मुझे बहुत, जब भी सुनती हूँ मुझे बहुत शांत हो जाता है मेरा मन, और अब मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछने लगी हूँ कि कैसे हम सेवा कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और बहुत सब मुझे नई नई बातें जानने को मिली है।
वेरी गुड, थैंक यू नवनीता, बहुत अच्छा। ओके, वी हैव प्रिंस कुमार।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण
गुरु जी, हमें इससे यह प्रभाव होता है कि जहाँ भी जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ तो मुझे कृष्ण कृष्ण भगवान का ही नाम जपने का मन करता है। किसी भी रास्ते से गुजरता हूँ तो बस कृष्ण भगवान जी का ही नाम जपने का मन करता है, और साथ में उनकी हर कथा और गाथा सुनने को ज्यादा मन करता है।
अरे बहुत अच्छा प्रिंस, सुनना चाहिए, अगर इच्छा हो रही है तो सुनना चाहिए। रचना, आप कुछ कहना चाहते
हैं? कृष्णा प्रभु जी, मैंने जब से इस्कॉन में, मतलब मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे श्री कृष्ण भगवान के प्रति बहुत ही ज्यादा उनकी सेवा करने का मन करता है, और हमेशा नई नई चीजों को कृष्ण भगवान के प्रति पढ़ने का मन करता है। और आपने बोला था ना, जैसे हम जब किसी को देखते हैं तो कृष्ण भगवान की याद आती है, वैसे ही मुझे जब भी मैं कहीं मंदिर जाती हूँ, किसी भगवान को देखती हूँ, तो मेरे मुंह से श्री कृष्ण भगवान का ही नाम निकलता
है। वेरी गुड। सो भगवद गीता सुनने से निश्चित आप सबको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है। अच्छा, लिंक आपको भेजा गया है, साथ साथ मॉर्निंग मेडिटेशन ग्रुप का भी लिंक है, और आप अगर ये 18 सेशन के ज्वाइन करना चाहो तो उसका भी लिंक है, 9 वीक्स का। और अगर कोई आपको क्वेरीज हैं तो आपको एक ईमेल आईडी भी दिया गया है, आप उस पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। ओके, अपर्णा कल्याणी मंत्री जी।
Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam.
Hare Krishna.
Actually, I used to get tensed about things and all, but now I started reducing my tension and thinking that everything is Krishna, good, bad, anything, everything is given by Krishna. And He's there with us every second, every minute, and He'll take care. And it is like totally samarpan to. I reduced my anger, reduced desires toward the material world also.
Thank you. Okay, Pavan.
हरे कृष्ण पर
आप में से जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं अगर वो चैट पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं. यस पवन बताइए.
हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी भगवद गीता सुनने के बाद हमें कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम ज्यादा बढ़ गया और विश्वास भी बढ़ गया प्रभु जी.
बहुत अच्छा, वेरी नाइस. दर्शन.
हरे कृष्ण प्रभु जी. भगवद गीता सुनने के बाद मुझे प्रश्न भगवान के बारे में जानने का और मन होता है. ऐसा लगता है कि सुनता ही रहूं जितना ज्ञान हो से उतना. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज तक मुझे कथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से मैंने आपका ये भगवद गीता का सेशन अटेंड करना शुरू किया है, मेरा मन करता है कि मैं सुनता ही जाऊँ. और मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील होता है. मुझे लगता है मेरा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है.
वेरी नाइस. ये प्रभाव है श्री कृष्ण का. जैसे हम कह रहे थे कि कृष्ण की कृपा आती है, सो ये सब चीज कृष्ण के कारण होता है. क्योंकि आप गंभीरता से कृष्ण का संदेश सुन रहे हो, कृष्ण आपके ऊपर निश्चित कृपा कर रहे हैं. देवांश.
हरे कृष्ण प्रभु जी.
हरे
मुझे कृष्ण कॉन्शियसनेस में इतनी ज्यादा रुचि नहीं थी. भगवत गीता को सुनने से ऐसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है और टेंशन और फियर कम होता है कोई भी काम करने से, और एक लाइफ का गोल मिल गया है.
वेरी हैप्पी. ओके नवरिता, आपने तो बोल दिया. यू वांट टू से अगेन समथिंग? कि हाथ गलती से उठा है आपका. नवरिता शुभजीत.
विष्णु प्रभु जी, पहले भी गीता ट्राई कर चुका हूँ पढ़ने का, लेकिन इस बार ये सेशन से क्लियरिटी बढ़ा, एकदम क्लियर जो नॉलेज है, और उसके साथ साथ धीरता, स्थिरता और समर्पण भी बढ़ रहा है.
थैंक यू. बहुत अच्छा. मानवेंद्र प्रभु. मानवेंद्र सिंह.
हरे कृष्ण प्रभु. ये भौतिक जगत ट्रेडमिल के दौड़ की तरह चल रही थी, और अब जीवन का उद्देश्य मिल गया है भगवत गीता को समझ के थोड़ा प्रभु.
थैंक यू. धन्यवाद प्रभु. ट्रेडमिल से बाहर निकलना चाहिए. ओके रचना, आपका हाथ. ओके देव दुबे.
प्रभु जी हो गया गलती से.
हाँ जी देव, आप कुछ कहना चाहते हैं?
हेलो.
यस बोलिए, सुनाई दे रहा.
हरे कृष्णा प्रभु जी.
हरे कृष्णा.
पहले तो ऐसा होता था प्रभु जी कि किसी की कोई बात सुनी और बिलीव कर लिया, उसी को मान रहे थे. लेकिन इस सेशन के द्वारा और आपकी ब्लेसिंग्स के द्वारा रियल फैक्ट्स पता चले, तो उसकी वजह से सही गलत में डिफरेंस पता चल रहा है. तो ऑब्वियसली बात है, फेथ इंक्रीज हो रहा है और अच्छा लग रहा है.
थैंक यू. धन्यवाद. यहाँ चैट में भी कुछ हैं, जस्ट ऐसे क्विकली पढ़ देते हैं चैट्स में जो आया है. सो यहाँ पर आया है कि एक मिनट पर और कुछ है. ओके इसमें है कि we should follow in the footsteps of Arjuna. हम लोगों ने सीखा कि अर्जुन के footsteps को follow करना है. कृष्ण के बारे में हम सोच रहे हैं जितना ज्यादा हो सकता है, और भगवद गीता को 10 दिन सुनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. या हमें द्वेष, हमें सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे हम ऐसा लग रहा है कि फ्री हो गए हैं। कृष्ण भावनामृत ने मेरे जीवन में एक डिसिप्लिन लाया है, has brought discipline in my life. We can't be desireless, but we can purify our desires. ये हमने सीखा बहुत अच्छा। Okay, एक प्रश्न है, when can we visit Greater Noida Center? Timing, please. Anytime. हम लोग सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करते हैं, आप आ सकते हैं। दोपहर में केवल बंद होता है 1 बजे से 4 बजे तक, और शाम को 7:30 बजे के बाद बंद हो जाता है, से बीच में कभी भी आ सकते हैं। ओके देन, और एक मैसेज है कि मुझे पता चला कि असली जीवन में नेक्टर क्या होता है, भगवान की भक्ति करना और उनके प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना। सो ऐसा लग रहा है कि मैं उस, जब भी आंखें बंद करते हैं तो मैं, ऐसा लगता है कि मैं उस नेक्टर में आराम से फ्लोट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस कमेंट्स हैव कम। सो भगवद गीता शोज अस द वे फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, वेरी नाइस। ओके, मीनवाइल हियर 2-3 हाथ और हैं, उनसे भी सुन लेते हैं। सविता,
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा
प्रभु जी, इस सेशन से लाइफ की क्लियरिटी हो गई है। हम अक्सर सुनते थे एवरीथिंग इज विद इन, पर समझ नहीं पाते थे। लिमिट्स कहते थे, ओनली यू कैन सेट योर लिमिट, स्काई इज द लिमिट, एवरीथिंग इज विद इन। अब समझ में आया कि विद इन का मतलब कि कृष्ण हर एक जीव में परमात्मा के रूप में हमारे दिल में, हृदय में बैठे हैं, एंड दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज विद इन, बिकॉज कृष्णा इज विद इन अस। तो ये समझ में आया कि फुलफिलमेंट जो है वो कृष्णा के थ्रू ही हो सकती है और उनके साथ ही हो सकती है। एंड ये बात बहुत क्लियर हो गई कि लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं लानी है, स्पिरिचुअलिटी ही लाइफ है, और उसी को सेंटर में रख के जो हम बाकी काम करते हैं वो हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहले बहुत कंफ्यूजन होता था प्रभु जी की मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस कैसे करें, बट इस सेशन से क्लियर हो गया कि बैलेंस करने की जरूरत नहीं, स्पिरिचुअलिटी ही लाइफ है और उसके साथ हम कैसे बाकी चीजों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी।
बहुत अच्छा, थैंक यू, गुड रियलाइजेशन, वेरी नाइस। अलंकृत ब्रजेश्वरी मंत जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
भगवत गीता मैंने भी पढ़ी है, लेकिन वो पढ़ने के बराबर ही थी, मतलब कुछ मेरे को समझ में नहीं था, बस सब बोलते पढ़ना है ऐसे ही था। लेकिन जब से आपने ये स्टार्ट किया तो मतलब हर चीज क्लियर हुई है, और एक मतलब कृष्ण के प्रति अटैचमेंट और ऐसे लग रहा है कि वो ही सब कुछ, मतलब एक सुन के ऐसा लगा ये सब। थैंक यू प्रभु जी।
थैंक यू, धन्यवाद। आखिरी हाथ हम देख रहे हैं, अमूल्य। ऐसा बोलना चाहोगे अमूल्य? ओके, आई थिंक आप अनम्यूट कर सकते हो, तो अपने आप को कर लीजिए। एनीवे, मीनवाइल यहाँ पर और कमेंट्स अच्छे अच्छे आए हैं। भगवद गीता शोज अस द वे फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, और भगवद गीता सुनने से कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। I feel increased, my will of surrender fully to Krishna. बहुत अच्छा, thank you. धीरे धीरे संशय खत्म हो रहे हैं और हर कार्य श्री कृष्ण को समर्पित कर पा रहे हैं, very nice. Learning the process of real bhakti towards to Lord Krishna, implementation of 9 devotional processes to reach Lord. Very nice, wonderful. और यहाँ पर है कि वृंदावन जाना चाहते थे, वो पूरा हो गया कृष्ण की वजह से, वेरी नाइस। और लिंक वगैरह आपको भेजा है, कृपया इसको कंप्लीट कीजिए। आई लाइक द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन द सीरीज। हियरिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा इज ऑलवेज ब्लिसफुल, द मोर यू हियर द मोर यू डेवलप लव फॉर हिम, कन्विक्शन एंड सरेंडर एनहांसेस एज योर यू हियर भगवद गीता अगेन एंड अगेन। थैंक यू प्रभु। I have realized that I can't afford to not be connected to Krishna for even a moment. Thank you. Wonderful realization. And then, okay, man ko bahut shanti milti hai. Bhagavad Gita Bhagwan ki vani hai. इसको पढ़ने और सुनने से पवित्रता आती है और सदा नए नए भाव आते हैं, कृष्ण से प्रेम बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच। सो ओके आई थिंक मोर और लेस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कमेंट्स। सो थैंक यू आज के लिए, वी विल स्टॉप हियर। प्रश्नोत्तर हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे, या फिर आपको ईमेल आईडी भेजा हुआ है iyfgreaternoida, उस पर आप iyfgreaternoida@gmail.com, तो आप उस पर अपने कोई प्रश्न हो तो आप भेज सकते हैं। और अब 11वां अध्याय, आप सब जानते हैं 11वां अध्याय क्या है, भगवान का विराट रूप, और बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मूवीज में एक्शन आता है तभी सब एक्शन सीन है ना, तभी बहुत बढ़िया एक्शन आने वाला है 11th चैप्टर, सो बी रेडी फॉर दैट। आने वाले शनिवार को हम फिर 11वें अध्याय का और फिर रविवार को 12वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।